बाबा के बच्चों को सेवा के प्रति बहुत लगाव है, बहुत रुचि है, जो बहुत अच्छी बात भी है। सभी सेवा में दौड़ दौड़ के आ भी जाते हैं, लेकिन सेवा में दो हिस्से हैं, स्व सेवा और विश्व सेवा। इन दोनों का बैलेंस बहुत आवश्यक है। आइए आज इसी विषय पर हम क्लास सुनेंगे, स्व सेवा एवं विश्व सेवा। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय रामनाथ भाई जी। भाई जी, आपका सभा में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। आपने 1972 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया और 1978 से अपने आप को बेहद सेवा में समर्पित किया है। आप रिलीजियस विंग धार्मिक प्रभाग के मधुबन कोऑर्डिनेटर है। ज्ञान योग और खास करके विचार सागर मंथन में आप विशेष रुचि रखते हैं, जो आपके क्लासों से हमें प्रतीत भी होती है। आपके स्वभाव की मिठास आपके वाणी द्वारा हम हमेशा अनुभव करते हैं। तो आइए हम ऐसी विशेष आत्मा द्वारा क्लास सुनते हैं, स्वसेवा एवं विश्व सेवा, आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है स्वसेवा और विश्व सेवा। तो अन्य किसी आत्मा की सेवा करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि मैं सेवा या ज्ञान सुनाने का योग्य हूं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी सुनना नहीं चाहता है, देखना चाहता है। तो अगर हमारे जीवन में ज्ञान है, धारणा है, तब बाबा कहता है आपके दृष्टि, आपके चलन, आपके बोल अपने आप सेवा करता है। कैसे करता है? तो सबसे पहले आया स्वसेवा। तो स्वसेवा कैसे करें? आज जब रोज हम मुरली सुनते हैं, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, हम सुनते बहुत कुछ है लेकिन वो याद नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि हमारी इतनी स्वच्छ नहीं है, दिव्य नहीं है, तो धारणा याद नहीं रहता है। अगर सवेरे आपने मुरली सुनी, एक शब्द, सारे मुरलियों से एक दो पॉइंट्स जो भी आपको अच्छा लगा उसको लिखना जरूरी है, लिख के रखना अपने जेब में अपने पास। जो भी सारे मुरली से कोई वरदान स्लोगन, कोई भी सारे मुरली से कोई भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगा, क्योंकि भगवान के महावाक्य है। सारे कल्प में आज बाबा ने मुरली में कहा, संगम पर ही सत्य का संग मिलता है, सारे कल्प में नहीं है। तो संगम पर ही सत्य ज्ञान मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा सत्संग है। जो अगर आपके बुद्धि में आज मुरली सुनी, आपने लिख करके रखा, अपने आप को सवेरे से रात तक पढ़ाते गए बार बार, तो आपके संबंध संपर्क में आपके सामने कोई भी आएगा, आप जरूर उनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाएंगे, क्योंकि आपके बुद्धि में वही है। जो बुद्धि में है वह आचरण में आता है। अगर बुद्धि में नहीं है, सुना आपने, पढ़ा, लिख के रखा है लेकिन याद नहीं है, तो आपके मुख से, क्योंकि इस शरीर के द्वारा बुद्धि काम करती है, ये सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि। जगह रात को आप सो गए, मच्छर बैठ गया, कौन मारता है? गहरी नींद में सोए हो, बुद्धि सोती नहीं है, बुद्धि जागती ज्योत है। और ये बुद्धि का ज्ञान सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुभ बाबा ने आके सिखाया। तब कहा बहुत बुद्धिवान है। जैसे देखो स्कूल में एक बच्चा एक साल पढ़ता है, 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, सब सुनता है, लिखता है, एक साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है तो 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है? किताब देख के तो नहीं लिखता है। तो जो पढ़ा सुना वो सब बुद्धि में है, तब कहते बहुत बुद्धिवान है, समझदार है, ब्रिलियंट है कहते हैं। अगर बुद्धि में ज्ञान है तब लिख सकते हो, जब बोलते हो, कर्म करते हो, किसी से बात करते हो, वो ज्ञान बोल में, कर्मों में, आचरण में आता है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है और कुछ है, तब बाबा कहता है शरीर को नहीं देखो, ये शरीर कुछ काम का नहीं है, वैल्यू नहीं इसका। लेकिन संगम पर हमारा शरीर भी वैल्यूबल है, इसी के द्वारा सारे कल्प का पुरुषार्थ करते हो, जो प्रारब्ध चाहते हो सारे कल्प के लिए वो इसी शरीर के द्वारा। तब हमें अगर ये स्मृति है, बुद्धि, स्मृति माना बुद्धि के अंदर याद, ये संस्कृत शब्द है, तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान याद है, लिख के रखा, अपने आप को पढ़ाया, याद है, तो अपने आप आपके दृष्टि किसी के ब्रकुटी में जाएंगे, यह आत्मा है, शुभ बाबा का बच्चा है, तुरंत शुभ भावना आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, इसका भी कल्याण होना चाहिए, इसको भी सत्युग में आना चाहिए, बाबा इसका भी कल्याण करो, शुभ भावना। नहीं, अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है, बुद्धि के अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, और कुछ करना है, बहुत सारी बातें हैं, कोई खाली नहीं है अभी। अगर एक मिनट भी खाली दिखाई दिया तो मोबाइल में नजर जाती है, तो ऐसी अवस्था है अभी, ऐसी परिस्थिति में हमारे बुद्धि में ज्ञान ठहरे असंभव है, संभव नहीं है। तब बाबा आया है, शिव बाबा असंभव को संभव करने के लिए आया है। ऐसे घोर कलयुग में ये नहीं हो सकता है, तो भी कोटों में कोई बच्चे हैं जो ज्ञान को, शिव बाबा के वैल्यूबल हीरे रतन है ये, इस ज्ञान को समझकर अपने बुद्धि रूपी डब्बी में जमा करते हैं, धारण करते हैं। तब ये बुद्धि जब भी किसी को देखती है, जब भी किसी से बात करते हो, कोई भी काम करते हो, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है, उसको कहते हैं ज्ञान युक्त कर्म है। अगर ज्ञान नहीं है, कर्म तो कर रहे हैं हम, देख तो रहे हो, तो शरीर ही दिखाई देगा, शरीर के गुण अवगुण दिखाई देंगे, काला गोरा लंगड़ा अंधा ये मित्र दुश्मन दिखाई देगा ही, संभव नहीं है। क्योंकि ऐसी आत्मा के प्रति शुभ दृष्टि रखो, शुभ बोल बोलो, कहने में आता है, कौन बोलेगा, कौन करेगा, ये करना चाहिए, सब लोग कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, कौन करेगा, जिसके बुद्धि में ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है, कहा वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली, ये सब शुभ बाबा के बच्चे हैं। अगर ये बुद्धि में ज्ञान है तब आप अपने आप ये नेगेटिव, इन्होंने कल गुस्सा किया था, बहुत दुख दिया था, हां शुभ बाबा का बच्चा है, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप सद्बुद्धि दे दो, इसको आप समझाओ, इसका कल्याण करो। नेगेटिव दिखाई देगा, नेगेटिव व्यवहार है, नहीं ऐसे नहीं, तो आपके पास बुद्धि में ज्ञान होने के कारण आपकी बुद्धि क्या करती है, उस नेगेटिव व्यक्ति को देखते हुए भी आपके मन में, बुद्धि में, दिल में उस आत्मा के प्रति शुभ विचार आता है। इसको कहा आत्मिक दृष्टि। आत्मा दिखाई नहीं देती किसी के ब्रकुटे में, आत्मा को देखो दिखाई नहीं दे, चमकता हुआ सितारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्मृति याद, बुद्धि को याद है कि ये सब यहां इस सृष्टि पर जो भी है वो सब शुभ बाबा के बच्चे हैं। याद है, ज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान अलग है, सुनने के बाद अगर बुद्धि में धारणा है, दृष्टि बोल, अगर बाय चांस दृष्टि शरीर पर गई, आपको तुरंत पता चलता है, देखो मेरी दृष्टि आज शरीर पर गई, मुझे किसी को कोई आइसक्रीम खा रहा था, उसको देखकर मेरे मन में इच्छा हुई मैं भी खा लूं, ताकि बाबा ने कहा बाहर की चीज नहीं खानी है, पता है, लेकिन वो खा रहा है, आज खाएंगे एक दिन। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है, वो आकर्षित होती है, इच्छा होती है, इसको हमने बाबा ने कहा ये माया है, माया का वार हुआ, माया कुछ नहीं है। हमारे अंदर बुद्धि के अंदर ज्ञान न होने के कारण हमारे दृष्टि बोल इच्छाएं कामनाएं है ना, इसलिए कहा शुभ कामना, किसी को देखते उनके प्रति शुभ इच्छा हो, इनका कल्याण हो, ये मेरा सुनता नहीं है, ये जो मैं कहता नहीं मानता है, ये ठीक नहीं है, तो मेरी कामना इच्छा उसने मेरे अनुसार चलना चाहिए, जो मैं कहता वही करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन इच्छा, ये शुभ नहीं है। हरेक का अपना पार्ट है, हरेक का अपना ड्रामा में कर्म है, फिर भी ज्ञान तो बाबा ने सुनाया, फिर भी कोई गलत दिखाई देता है, आप कह सकते हो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, करना न करना उसके हाथ में है। तो ये समझकर, ये कौन समझता है, ज्ञान में रोज कहते हैं बाबा, रोज कितने सालों से कह रहा है, लेकिन वो बुद्धि में नहीं जा रहा है, याद नहीं रहता है। तब कहा गीता में कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अगर ये सभी मोह ममत माया से मुक्त होना चाहते हो तो स्मृति याद चाहिए, ये स्वसेवा है, स्वयं को ज्ञान से भरपूर करो, रोज एक एक बूंद एक एक महावाक्य नोट करो, वो सारी मुरली नहीं चाहिए, 30 दिन के अंदर 30 मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में धारण होंगे। तो ज्ञान से अगर बुद्धि भरपूर है तो वहां व्यर्थ आने सकता है, मन खाली नहीं रहेगा, खाली मन शैतान का काम करता है कि उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो क्या करेगा, किसी को देखते ही खाली समय है। बाबा ने परसों कहा था कि व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प, समय बहुत है, खाली मिला मोबाइल लेके बैठे, क्या मिलेगा, पेट भरेगा, आदत बने, खाली है, समय व्यर्थ, समय को व्यर्थ गवाना है। हाँ मोबाइल यूज करो, किसी ने फोन किया सवेरे एक घंटा, दिन में एक घंटा, शाम को एक घंटा जरूर दे दो, मोबाइल छोड़ो ऐसा नहीं, एक घंटा यूज करो सवेरे नाश्ता करने के बाद, उसके पहले मुरली क्लास में योग में मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी है सवेरे सवेरे मुरली क्लास में जरूरत नहीं, योग में भी जरूरत नहीं है ना, उसके बाद आया एक दफा देख लो, कोई मिस कॉल आया, कोई मिटाना है, करो एक घंटा ले लो, फिर उसके बाद हाथ नहीं लगाओ, फिर अपने कर्म करते रहो, फिर दिन में खाना खाने के बाद एक घंटा दे दो जरूर, किसी का फोन आया रिंग बजता है तो ले लो, खाली है तो अपने आप मोबाइल देखते रहो, इसको बाबा ने कहा समय संकल्प व्यर्थ जाता है, ये संगम का वैल्यूबल समय है, तो ज्ञान कहां चलेगा, मतलब बुद्धि के अंदर ज्ञान का चिंतन कहां चलेगा, कहां बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा, जो मोबाइल में देखा सुना वही याद रहेगा ना, बार बार देखते हो, ज्ञान सवेरे एक दफा पढ़ा, और आज के दुनिया में तो कोई लिखता नहीं, सब कहते हमारे मोबाइल में है, मोबाइल लेके सत्युग में जाएंगे, हाँ मोबाइल में है रहने दो, लेकिन आप अपने हाथों से लिखो कर्म किया और अपने पास रखो, ये बहुत वैल्यूएबल रत्न है, हीरे है, अपने साथ रखो, फिर जब जब खाली समय मिला अपने आप को पढ़ाओ, और कोई मिला सामने, जरूर उसको दान करने की आदत डालो। नहीं तो आप अब देख लो, अभी भी साक्षी होकर बाबा मिलन के लिए आए थे, आप बाप दादा के मिलन में आए थे ना, घूमने के लिए तो नहीं आए थे। मुरली सबने सुनी, दौड़ दौड़ के आकर के बैठ करके आप में से अपने आप से पूछो, वो बाबा ने जो मुरली में कहा वो आपने किसी को भी शेयर किया, किसी को सुनाया? पूछ लो आप, कितने लोग बाबा के बच्चों ने सुनकर चिंतन कर औरों को भी सुनाया, वो हाथ उठाओ। कितने देख लो, कितने कितने बैठे और कितने, 1% 2%। तब कहा ये सत्संग है, हम सत्य का ज्ञान सुन रहे हैं, ये सत्य ज्ञान है। ये ज्ञान अगर आपके बुद्धि में है, उसका चिंतन करते हो तो सत्संग है, ये सत्य के साथ हो तो आत्मा मन भी स्वच्छ होगा, संस्कार भी स्वच्छ होंगे, है ना। स्वच्छ आत्मा को स्वच्छ शरीर भी मिलेगा, सत्युग में कौन जाएगा। बाबा ने कल कहा था बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, कल ये शरीर छोड़ के हम उधर जाएंगे सत्युग में, कौन जाएगा, सभी जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, होंगी, उसको होंगी जो कर्मातीत बने हैं, नहीं तो सजा खाने पड़ेंगे, दुखी होके जाना पड़ेगा। जो कर्मातीत हुए हैं वो जाएंगे। तब बाबा ने कहा मेरे जैसे बनो तब मेरे घर में आ सकते हो। शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, है ना, नंबरवार है। सभी राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली वाले भी चाहिए, तो नंबरवार है, लेकिन वो तो चाहिए ना। अगर क्रोध का अंश भी रह गया तो सत्युग में जा सकते हो, चाहते तो हो जा सकते हो, नहीं है ना, तो उसको यहां ही मिटाना है। इसके ऊपर ज्ञान और योग का प्रयोग, जैसे उदाहरण देख लो, अगर आज किसी को शुगर की बीमारी है, दवाई ले रहे हो और बीमारी ठीक नहीं हुई, शरीर छूट गया, कहां जाएगा, कहां जन्म लेगा, किस शरीर में जाएगा। जिस परिवार में शुगर की बीमारी है उसी परिवार में जन्म लेगा, क्योंकि संस्कार ले जाता है, जैसे संस्कार वैसे संसार। जो भी बीमारी शरीर की आत्मा की जो कुछ है वो यहां ही संगम पर ही मिटाना है। तब मिटाने वाला शिव बाबा आया है। बाबा ने कहा मैं पाप कटेश्वर हूं, पाप को मिटाने आया हूं और कुछ देने के लिए नहीं आया हूं। अगर बच्चों से पाप मिट गया, मिटाया आपने, तो वो पवित्र आत्मा ही थोड़े से है, वही सत्युग में जाएंगे, वही परमधाम जाकर के सत्युग में जाएंगे, बाकी सब परमधाम में रहेंगे। क्यों, पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र शरीर चाहिए, अपने आप तो नहीं मिलेगा। रोज मुरली सुन रहे हैं हम, बाबा की सेवा कर रहे हैं, नहीं, विधि है, सेवा तो सब लोग कर रहे हैं। अभी देखो बाबा भाग्य विधाता का, शिव बाबा कौन, शिव बाबा के 8 शक्तियां है, भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। कौन सी विधि है वो, गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कैसे बनेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली, कैसे बनेंगे, सहज तरीका है। देखो भाई जी क्या करता था, ज्ञान में आने से पहले उनके दरवाजे पर कोई भी गरीब कोई भी आता है उनको दान देता था, खाना देता था, दान करने की आदत थी, भारत के अंदर सबकी है। अभी इनको ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला, कि हम आत्माएं परमधाम से आए थे सभी, इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं वो सब शुभ बाबा के बच्चे हैं, ये ज्ञान मिला, बाप और बाप की रचना का ज्ञान मिला। अभी वही गरीब व्यक्ति या वही व्यक्ति इनके घर के सामने आज भी आता है, तो आज भी ये खाना देते हैं, दान करते हैं, तो दोनों में अंतर है? सेवा तो सब भी कर रहे हैं सारे विश्व के अंदर, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली कौन बनता है? कौन बनता है? सेवा तो सब कर रहे हैं, एक का पदम गुना। तो पहले वो जब खाना देता था तो शरीर को देखता था, अरे ये गरीब है, ये साधु है, ये है, शरीर को देखकर दान करता था। एक का एक गुना मिलता था एक जन्म के लिए। अभी इसको ज्ञान मिला, उनको तो नहीं है, वो आता है अभी भी, तो इनको ज्ञान क्या है कि ये भी व्यक्ति परमधाम से आया है, ये भी शुभ बाबा का बच्चा है। उसको देखते ही शुभ बाबा याद आया, अरे ये भी परमधाम से आया, ये भी शुभ बाबा का बच्चा है, ये समझ करके दान करता है। एक का पदम गुना जमा होता है कि शुभ बाबा अविनाशी है। अगर उसको याद करते हुए कोई भी कर्म करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। नहीं तो सेवा तो बहुत लोग सारे विश्व के अंदर, हर एक के खून के अंदर ये संस्कार है, दान करने का, डोनेशन करने का, सेवा करने का, कुछ देने का, सबके अंदर है, सभी धर्मों में है, सभी मनुष्य आत्माओं में है। लेकिन बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, एक का पदम गुना। सहज विधि है, इसलिए इसका नाम सहज राजयोग। संसार में रहो, सब कुछ कर्म करते रहो, कोई भी सामने आया, बुद्धि के अंदर ज्ञान है ये शुभ बाबा का बच्चा है, ये परमधाम से आया है, लंगड़ा है, गरीब है, करोड़पति है, मिनिस्टर है, फिल्म एक्टर है, कोई भी हो। नहीं तो हम शरीर को देखते हैं, ये मिनिस्टर है, ये फिल्म एक्टर है, हम शरीर के प्रभाव में आके सेवा करते हैं। तो एक का एक गुना, सिंपल तरीका है, एक का एक गुना। क्योंकि आपने किसको देख के सेवा किया? शरीर को देखा। अगर उसी आत्मा को देखते आपके अंदर ज्ञान है ये शुभ बाबा का बच्चा है, ये परमधाम से आया है, ये बुद्धि में है, तो वो सेवा जो करते हो उसको बाबा ने कहा श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है। थोड़े से समय के अंदर गृहस्थ में रहते हुए भी आप 108 के माला में आ सकते हो, उच्च पद पा सकते हो। सिर्फ विधि चाहिए, इसको कहा स्व सेवा। स्वयं को भाग्यवान तकदीरवान बनाना चाहते हो, कोई कला नहीं है, कुछ भी नहीं आपके पास, कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है, खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुभ बाबा ऐसे बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है। साधारण बच्चों को क्या से क्या बनाता है जिनके पास कुछ भी नहीं था। उदाहरण आपने सुना बोध मम्मा, बाबा मम्मा का उदाहरण देता है, एक ही मम्मा ने, ऐसे बहुत बच्चे थे, आज भी है, कहां से कहां पहुंच गए। क्यों? बाबा शुभ बाबा कौन है? वो भाग्य विधाता है, बच्चों को भाग्य बनाने की विधि बताता है। वो विधि को जानना ये स्वयं की सेवा, स्वयं को भाग्यवान बनाने के तरीका सहज है। उसमें से दो पॉइंट कहा, एक ज्ञान बुद्धि में रहे उसकी विधि बताया, दूसरा कोई भी सेवा करो, स्थूल करो, सूक्ष्म करो, किसी को ज्ञान सुनाओ, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, कोई भी सेवा करो, लेकिन सेवा करते समय ये याद रहे, बाबा के भंडारे में भी पैसे डालते हो तो भी शुभ बाबा ये आपकी सेवा के लिए है, बाबा को दिया। अभी अभी आपको एक उदाहरण बताता हूं प्रैक्टिकल। अभी एक महीने के अंदर एक सेंटर में भंडारी कोई उठा के लेके गया, एक महीना हुआ, पुलिस कंप्लेंट किया, सीसी कैमरा लगा हुआ है, उसका चेहरा भी है, कौन है सब कुछ दिखाई देता है। पुलिस ने कहा हम क्या कर सकते हैं, एक महीना हो गया, एक महीना किसको दिया था आपने? बाबा को दिया था। शिव बाबा कौन? अविनाशी है, वो भी बंधा हुआ है, बच्चों को एक का पदम गुना बना के देना है। तो वो धन कोई भी खा नहीं सकता है, कोई भी लूट नहीं सकता है। हरेक ने इसी भावना से डाला हुआ। एक महीने के बाद वो भंडारी ऐसे के ऐसे मिल गई। कल ही समाचार आया, कल ही मुझे बताया भाई जी एक महीने के बाद भंडारी ऐसे के ऐसे है। भगवान इसलिए कहा बाबा कहां है, तब कहा आज बाबा ने कहा सत्य का संग, आपने सत्य की स्मृति, तब बाबा ने आज कहा निरंतर सत्य के संग में रहो। आप भी देख लो सारा दिन आपके साथ कोई ना कोई तो है, अकेले तो नहीं हो, सन्यासी तो नहीं हो, तो आप पूछो कि आपके साथ जो है वो कभी भी सारे दिन में ज्ञान के पॉइंट सुनाता है? पूछ लो अपने आप से, ये ज्ञान की बात करता है कि इधर उधर की बात करता है? तब का संगति संग दोषः, उस संग का वो दुनिया के इधर उधर की बातें करेगा, आपकी बुद्धि को भी बिगाड़ेगा, ये माया का संग है। ऐसे व्यक्ति से संग रखो जो आपको सवेरे से रात तक मिलता है, ज्ञान की बातें करता है, ये सत्य है, सत्य ज्ञान देता है, झूठा ज्ञान नहीं देता है। झूठा ज्ञान दुनिया का है जो सत्य नहीं है, विनाशी है, ये अविनाशी है, आपको भी स्वच्छ करता है, आपके भाग्य को भी बनाता है, आपकी स्मृति को भी जागृत करता है। ये छोड़कर अगर और दुनिया की कोई बातें करता है तब संग ये सत्संग नहीं है। अभी हमको देखने की जरूरत है, समय ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, वातावरण ऐसा है, ऐसे एक नाजुक समय पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो। देखो महाभारत भी सुनते हो, कौरवों के साथ कौन था, पांडवों के साथ कौन था, कौन था, कौन मिलता था, कुछ भी प्रॉब्लम आया, समस्या आया, किसको पूछते थे, किसके पास जाते थे, कौन उनको सहारा देता था, निवारण देता था? कृष्ण के, श्री कृष्ण के पास जाते थे। पांडव भगवान को अपना साथी बनाया। आज हमारे पास भी बाप दादा ने कहा आज एकाग्रता की शक्ति अगर है आपके पास तो आप किसी आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। तो अगर आपके मन में कोई भी है, इधर उधर नहीं, बाप भी है हमारा, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों है, बाबा के कमरे में बैठो, कोई भी इधर उधर की बात आया बाबा को बताओ, टीचर को बताओ। जैसे पांडव किसके पास जाते थे? श्री कृष्ण के पास जाते थे। तो अगर हमारे पास भी, कल बाबा ने कहा ये श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते 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 कहां पहुंच गया, अभी कहां है, अभी भी बच्चों की सेवा के लिए है। तो आप बाबा के कमरे में बैठो, कोई भी दिल में इधर की उधर की बात है, दुख है, समस्या है, बाबा आया, बाबा ने कहा मैं टीचर के रूप में हूं संगम पर, तो हर बात मेरे से पूछो, मुझे बताओ, मैं सुनता हूं, उसका पूरा ध्यान इधर ही है और किधर नहीं है। अगर हमारी एकाग्रता नहीं लेकिन उसकी तो पूरी है, पूरे बच्चों पर ध्यान रखता है, ये बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी पालना करता है। हर एक सेंटर पर आज इतनी बाबा के बच्चे हैं, हर एक के ऊपर क्या कर रहे, साक्षी होके देखता है, इंटरफेयर नहीं करता है, देखता है, क्योंकि उसका भी धर्म और कर्म है, संगम पर उसकी भी कोई जिम्मेवारी है। अगर आपको कोई सेवा दिया तो आपकी जिम्मेवारी है, ये सेवा करनी, इस विधि से करनी है। बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं भी जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकता हूं, तो मेरी भी ड्यूटी है, सेवा है संगम पर, बच्चों पर ध्यान देता है, हर एक बच्चों पर, बच्चे क्या करे देखता है साक्षियों के, जहां जरूरी है वहां सहयोग भी देता है, टचिंग भी देता है, मदद भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता, आपके कर्म आपको भोगना पड़ेगा, जो कर्म किया लेकिन उसकी भी विधि बताता है, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे योग लगाओ, ऐसे बहुत जन्मों के विकर्म हैं, इसको योग अग्नि से मिटाओ, तन बाबा की सेवा में लगाओ, खाली व्यर्थ समय इधर उधर नहीं गवाओ, फिर ऐसा जीवन समय नहीं मिलेगा, अंत में पश्चाताप होगा, अरे मैंने सारा दिन में क्या किया, किसकी सेवा किया, कहां लगाया ये तन, ये मन कहां लगाया, किसकी सेवा में लगाया, अंत में पश्चाताप होता है। जैसे स्कूल में बच्चा जब पढ़ाई पढ़ता है तब टीवी देखता है, घूमने जाता है, खेलने जाता है, जब परीक्षा के टाइम पर पश्चाताप करता है, कुछ लिख नहीं पाता है, क्यों, सारा साल समय गवाया। तो हमें भी अंत में याद आएगा मैंने क्या कमाई की, आज बाबा ने कहा मुरली में, अपने आप से पूछो, देखो मैंने क्या भाग्य बनाया है, बाबा की प्रॉपर्टी मैंने कितना लिया है, सर्वशक्तिवान है वो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने आया, किस शक्ति मैंने प्राप्त किया है, मेरे पास कौन सी शक्ति है, क्या प्राप्त किया, मैंने क्या भाग्य बनाया, कल उनको देखेगा, अरे ये तो मेरे साथ था, ये तो क्या हो गया देख लो, और हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये पश्चाताप होता है। उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी भी समय है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दो ही काम करना है, बहुत नहीं है, बहुत कुछ पुरुषार्थ करो नहीं, दो ही काम, दो ही गोली खा लो सारी बीमारी अपने आप ठीक होगी, दो गोली रोज खाना जरूरी है, कौन सी है वो कौन बताएगा, दो गोली है, एक रोज सवेरे विधि पूर्वक, बाबा ने कहा यथार्थ विधि है, शिव बाबा ने परमधाम से आके सिखाया है, अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा की बीमारी मिट जाएंगे, विधि, ये गोली खाने की विधि है, कभी भी गोली खा लो नहीं, खाली पेट खाना है, तो खाली पेट सवेरे उठकर या शाम को, ये गोली खाने की विधि है आत्मा की बीमारी मिटाने के लिए। आत्मा के अंदर बीमारी है कैसे पता चला, स्वप्न बताता है, जब रात को सोते हो ये स्वप्न कहां से आए, कहीं से आता नहीं है, हमने किया हुआ भरा हुआ है वो दिखाता है, उसको मिटाना है, तो वो दवाई क्यों ले रहे हो, ये बीमारी है, सिर दर्द है, इसको मिटाने के लिए ये गोली लेनी है, इस पाप को मिटाने के लिए ये गोली है, रोज सवेरे 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट, एक एक दो दो घंटा नहीं चाहिए, हो सकता है दवाई एक गोली कड़वी है कि मीठी है, विधि विधि पूर्वक लेना, मैंने जैसे भी चाहे ले लो, मुझे आंखें बंद करके योग करने में अच्छा लगता है करो, लेकिन ये बाबा की श्री मत नहीं है, शिव बाबा परमधाम से आया विधि बताता है, बच्चे आंखें खोलकर अलर्ट होके बैठो, किसी को दिखाने के लिए किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अलर्ट होके बैठो, नींद करते बैठे हो किसको दिखा रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, रात को नींद किया कितना घंटा करना चाहिए, आराम अलर्ट होके बैठो, भगवान को याद करने बैठे हो, जागृत होके बैठो, कहा आंखें बंद नहीं करना, आंखें बंद खटिया पर करते हैं, और फिर अपना आत्मचिंतन करो, अपने आप से पूछो मैं कौन, क्यों शरीर के भान में रहते हैं हम, शरीर में होते हैं, अपने को जागृत करो, इसको कहा इंग्लिश में एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस, अपने को जागृत करना पड़ता है, फिर शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा कौन, कहां है वो? तो बाबा ने कहा मैं जो हूं जैसा हूं। अभी भी बच्चे में भी कोई नहीं जानते हैं, बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे? बच्चा मां को कब याद करता है? जब भूख लगी तो मां याद आती है, पैसे चाहे तो मां नहीं याद आएंगे, बाप याद आएगा। शिव बाबा कौन? वो पवित्रता का सागर है, मुझे उसके जैसे बनना है। शिव बाबा कौन? शांति का सागर है, आनंद का सागर है। एक एक शक्तियों को चिंतन करो तो शक्तिशाली याद कहा। अगर ऐसे आप 15 मिनट आज बाबा ने कहा जितना समय बाप को याद करते हो, सत्य के साथ जुड़े रहते हो, उतनी आप सारे विश्व को वाइब्रेशंस भेजते हो, अपने आप नहीं जाएगा। जब आप पवित्रता के ऊपर सोचते हो, बाबा आप किस में पवित्र हो, मुझे किस में पवित्र बनना चाहिए, इस बात में कैसे पवित्र बनना चाहिए, हर पवित्रता के ऊपर अगर आधा घंटा 15 मिनट बाबा से बात करते हो, आप क्या करो, आपका फैन चल रहा है, कौन सा वाइब्रेशन छोड़ रहा है? पवित्रता के वाइब्रेशंस फैला रहे हो, अपने आप वाइब्रेशन नहीं फैलता, फैन है चल नहीं रहा है, हवा निकलेगा, हवा फैलेगा। ये सोचना, कहते सारे विश्व की सेवा करो, बाबा भी कहते एक जगह बैठो, सारे विश्व के अंदर शांति के वाइब्रेशन अपने आप जाएगा। योग में बैठकर शिव बाबा कौन? शांति का सागर है। हां वो तो है, मैं कौन? वो अपना काम कर रहा है, मुझे करना है तो मुझे उस पर सोचना है, बाबा आप किसमें शांति हो, शांति के सागर हो, मैं कैसे शांत बनो, किसमें शांत बनो, शांति क्या, अशांति क्या। अगर बाबा से बात करते रहते हो उस समय आपके द्वारा जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो शांति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। शिव बाबा आनंद का सागर है। आनंद माना क्या? आनंद किसको कहते हैं? मुझे सदा आनंदित रहना है। कैसे होगा ये? जैसे कल बाबा ने स्लोगन में कहा था, क्या नहीं होना चाहिए? खुशी गुम नहीं होना, खुशी का जो ये है वो नीचे नहीं होना चाहिए, सूची का प्रेशर जो कम नहीं होना चाहिए, सदा खुश, यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है, खुशी का जो प्रेशर है। तो यो जो आनंद स्वरूप बाबा से 15 मिनट 10 मिनट एक घंटा तक अगर मंथन करते हो तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाते हो, ये विश्व की सेवा है। स्वसेवा से अपने आप को जागृत करते हो, इसको कहा सकाश। आकाश में रहो, परम धाम में रहो, बाबा से बात करते हुए क्या बात? शक्तियों के ऊपर, उसको कहा पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाओ। पावर उधर है, पावर का चिंतन करते हो तो पावरफुल वाइब्रेशन चलता है। फैन चल रहा है एक नंबर पर, हल्का सा चलता है, उसका पावर बढ़ाओ 4 नंबर 5 नंबर करो तो कितना फास्ट चलता है, कितना हवा फैलता है। ऐसे ही जितनी आपकी स्थिति माना सर्वशक्तिवान शुभ बाबा से कनेक्शन जुड़ा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन क्लियर। अगर योग में बैठे कोई इधर उधर के विचार नहीं, मन बुद्धि दोनों, क्यों? कि भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। अगर आप हमारे सामने आए तो दो हाथ जोड़ेंगे ना, तो शुभ बाबा आया तो क्या करेंगे? एक हाथ से नमस्ते करेंगे, उसको भी दो हाथ। कौन से दो हाथ? ये नहीं, आत्मा के दो हाथ है, मन और बुद्धि को जोड़ो, इसको एकाग्रता कहा। शुभ बाबा को नमस्ते करना आत्मा समझ के नमस्ते करना, शरीरधारी को शरीर समझ के करते हो, शरीर के द्वारा करते हो। तो आत्मा को शुभ बाबा को अगर आप याद करते हो तो मन बुद्धि अगर इधर उधर जाते, इधर उधर के विचार आते हैं, मीन्स आप बाबा को नमस्ते नहीं कर रहे हो। कोई मेहमान, कोई बड़ा व्यक्ति आपके सामने आया, आप इधर उधर देख रहे हो, हाथ से नमस्ते नहीं कर रहे हो, तो उसका सम्मान हो गया? आप इधर उधर ना देखते, उसी को देखते हुए दोनों हाथ जोड़ते हो, तब सम्मान कहेंगे ना। तो यहां भी शुभ बाबा को याद करने बैठे हो, शुभ बाबा को सम्मान दे रहे हो, तो मन बुद्धि दोनों हाथ है ये आत्मा के, इसको आत्मा समझ के नमस्ते करना। तो मन बुद्धि में उस समय और दूसरा कोई सेवा का भी, दादी प्रकाश मणि हमको शुरू शुरू में पूछती थी, जब हम दादी क्लास करती थी, अगर योग में बैठकर बाबा की सेवा की अगर याद आया, क्या ये योग? कहती है नहीं, योग माना आप और बाप के अलावा बीच में कोई नहीं है, सेवा सेवा के समय पर अलग। योग में बैठकर आप सेवा का प्लानिंग करो तो ये योग नहीं, सेवा अलग है। ज्ञान सुनते समय भी ज्ञान अलग है, योग अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट है ये। तो यहां भी मुरली सुनते समय भी हम कौन आया, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। अगर बच्चा देखो स्कूल में पढ़ता है तो बार बार कहा जाता है प्लीज गिव अटेंशन। अटेंशन क्या है? ये शरीर के लिए। अगर इधर बैठा आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ये शरीर के लिए कहा जाएगा। अगर आत्मा के लिए अटेंशन, मन और बुद्धि के अंदर दूसरे विचार चल रहे हैं, मुरली सुन रहे हो, आंखें खुली इधर देख रहे हो, लेकिन बुद्धि के अंदर अरे अभी जाना है, कि कब 12 बजेंगे, 11 बज गए, अभी जाना है, कुछ विचार आ रहा है, तो यहां क्या सुना? अटेंशन नहीं है। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का अटेंशन, वो फिजिकल यूनिवर्सिटी का अटेंशन। शरीर स्थिर रखो, इधर उधर देखो नहीं, और यहां स्पिरिचुअल मन और बुद्धि स्थिर हो, हलचल ना हो मन के अंदर, इधर के विचार उधर के विचार, इधर देखा और पुरानी कोई बातें याद करते बैठे हो, तो ये एकाग्रता नहीं है। इसको कहा ध्यान से सुनना। ध्यान क्या है? मन बुद्धि के अंदर दूसरे कोई विचार नहीं, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनते हो, तो बुद्धि रिकॉर्ड करती है। अगर बाहर जाते ही पूछो क्या सुनाया था, तुरंत बोलते हो आज ये सुनाया, आज ये सुनाया। उसको कहा नंबर वन स्टूडेंट। नहीं तो सुना बहुत कुछ, क्लास एक घंटा बैठे, बाहर जाते ही पूछो क्या सुना था, बहुत अच्छा था, क्या था बताओ, एक घंटा समय व्यर्थ। क्या किया? यहां बैठ करके मोबाइल में किसी से बात किया और कुछ इधर देखा उधर देखा, टाइम पासिंग। टाइम पासिंग, समय वैल्यूएबल है। जीवन संगम युग का बहुत वैल्यूएबल है। सारा कल्प का आधार इस पर है। ये दो ही काम करना है, एक सवेरे योग विधि पूर्वक 15 मिनट ही बैठो कम से कम, एक दो घंटा बैठो, नींद करो, इधर देखो उधर देखो, पानी भी पीते रहो, मोबाइल भी देखते रहो, ये काम करने का नहीं है स्थान। यहां आत्मा को खाना खिलाना है, 15 मिनट आपके ताकत 15 मिनट है, आज आधा घंटा अलर्ट होके बैठो। और मुरली सुनते समय भी ध्यान से एक एक पॉइंट अच्छा जो लगा वो नोट करो, लिखो, एक दो तीन पॉइंट लिखो। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। अगर उच्च पद पाना चाहते हो तब बाहर जाते ही कोई मिला, जरूर आपके मुख से आज का ज्ञान रतने निकलेगा। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, सवेरे से रात तक। इसको कहा ब्राह्मण, कल बाबा ने कहा था यज्ञ की सेवा करने रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कौन? जिसके बुद्धि में ज्ञान सदा टपकता रहता है। इसलिए ब्राह्मणों के ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। तो हमारा शास्त्र ज्ञान है, मुरली है, मुरली सदा बुद्धि में। रात को कोई किसी ने पूछा आपको आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत बताते हो। हाँ तब कहा इनके दिल में दिलाराम बैठा। दिल माना बुद्धि, बुद्धि के अंदर ज्ञान है। आप कहेंगे ना बाबा ने ये कहा, बाप बुद्धि में है। इसको कहा दिल, दिल में बाबा बैठा है। जब भी पूछो तुरंत, जैसे हनुमान ने दिखाया अपना ये छाती खोल के दिखाया, आप कैसे बताएंगे? आपको बुद्धि कोई मिला आज बाबा ने ये कहा था, अगर आपके मुख से आ रहा है तो वो सामने भी सोचेगा। गुलजार दादी बोलती थी शुरू में, आज से 40-50 साल पहले मधुबन में दादियां क्लास करती थी, तो गुलजार दादी सदा कहती थी कि खुश रहो खुशी बांटो। हम सोचते थे दादी ने तो कुछ दिया नहीं है, क्या बांटो, खुशी कहां मिलती है। तो एक दिन सोचा हाँ बाबा ने सवेरे जो मुरली दिया वो एक पॉइंट अगर याद है, सामने कोई मिला उसको मुरली के पॉइंट सुनाओ और उसका चेहरा देख लो, अरे मैंने भी मुरली सुनी थी, मुझे याद नहीं, इनको याद है, उसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता है और आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। जो औरों की सेवा करना चाहते हो, स्वयं के अंदर ज्ञान हो, पहले स्वयं की सेवा करो, स्व सेवा और विश्व की आत्मा यहां बैठे हुए सारे विश्व को। आज बाबा ने मुरली में कहा लास्ट में कि एकाग्रता अगर है, कोई व्यर्थ इधर उधर की अटैचमेंट नहीं है, बंधन नहीं है, प्रभाव नहीं मन बुद्धि पर, तो सीधा परम धाम जाता है, सूक्ष्म तन में जाता है। बाप दादा को बता, बाबा ये आपका बच्चा बहुत अच्छा है, रोज क्लास करता है, सेवा करता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी करता है, हाँ कभी कभी और कुछ करता है, बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि अपना परिवार है ना। सूक्ष्म तन में जाके बाप दादा को बताते हो, और अन्य आत्मा सारे विश्व की आत्माओं के लिए शुभ बाबा के बच्चे हैं, परम धाम में स्थित होकर सारे विश्व को सकाश दे दो का। पर हम अपने आप नहीं, अपने आप दे सकते हो, अगर आप सूर्य आया सूर्य के प्रकाश लेकर दूसरों को दे दो, दे सकते हो, इधर बैठ के दे दो नहीं, अगर वो भी कर सकते हो, बाहर जाना पड़ेगा एक मिरर लेकर सूर्य के सामने पकड़ो और घुमाओ, ऐसा सूर्य के किरणें रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसे यहां भी सर्वशक्तिवान शुभ बाबा सूर्य है, सर्वशक्तियां है, एक एक शक्ति ले लो, उसका मंथन करते हो, आप चारों तरफ वाइब्रेशंस फैला सकते हो, किसी एक आत्मा को भी दे सकते हो। इसको कहा विश्व सेवा। कौन करेगा? जिसके ये दोनों हाथ स्वच्छ है ना, दोनों हाथ काले हैं, कैसे हाथ नमस्ते करेंगे? हाथ धोके करेंगे ना। मन बुद्धि स्वच्छ चाहिए। कैसे होगा वो स्वच्छ? आज के मुरली का पॉइंट लिख के रखा, बार बार अपने को पढ़ाते रहते हो तो मन बुद्धि स्वच्छ रहता है, कोई मिला उसको सुनाते हो स्वच्छ होता है। तब कहा कि अच्छे विचार करना चाहिए। कैसे होगा? कहां मिलेगा? थोड़ा विचार करना चाहिए, बहुत विचार नहीं, खाली मन है, व्यर्थ बहुत चलता है, फास्ट चलता है, इसलिए ब्लड प्रेशर कहा। आज किसी को ब्लड प्रेशर इसका बहुत है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ? कोई गलत नेगेटिव विचार चल रहा है फास्ट गति से, जैसा विचार चलता है वैसा खून भी चलता है। जैसे गाड़ी चलाने वाले उनको बोलो धीरे चलो, कैसे चलेगा? उसका मन फास्ट चलता है, मन फास्ट लेता है तो एक्सीलेटर जो है वो भी फास्ट दबाता है, गाड़ी कैसे स्लो जाएगी? कौन चलाता है? वो मन चलाता है। तो मन को धीरे करना चाहते हो, विचार धीरे करना चाहते हो, तो उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो ये ज्ञान आप फास्ट गति जो है वो अपने आप धीरे करता है। सबका शांत मन कैसे होगा? अपने आप तो नहीं होगा, कुछ करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अभी सुना बहुत कुछ, अभी 5 मिनट बाबा को याद कर सकते हो कि सुनते रहना चाहते हो? नहीं, यहां बैठने से अच्छा नींद आती है, ठंडा वातावरण है ना। देखो किसी को नींद नहीं आते ना, वो बाबा के कमरे में हॉल में उनको अच्छी नींद आती है। क्यों? पवित्र वातावरण है, स्वच्छ वातावरण में अच्छी नींद आती है। तब कहता आज अच्छा योग लगा, है ना। तो वो योग करना, निंद्रा योग करना चाहते हो? नहीं, किसी को रात को नींद नहीं है, यहां बैठो अच्छा आराम से नींद आती है, क्योंकि वातावरण स्वच्छ है, कोई आवाज नहीं, अशुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध वातावरण है, तो गहरी नींद आती है। तो इसके लिए अभी रात को तो सबने सोया है, अभी आंखें खोल के आराम से बैठो अलर्ट होकर, और विधि बताया, बात 2-3 मिनट बाबा को याद करेंगे ना, तब तक 11:30 बज जाएगा, ठीक है। तो 3 मिनट तो कम से कम याद करो, बैठो, पूछो मैं कौन, अपने को जागृत करो, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं, फिर मेरे गुण आत्मा के 7 गुण याद करो, मैं संपूर्ण पवित्र था, आज नहीं सत्युग में था, अभी मुझे सत्युग में जाना है, तो ये सातों गुण लाना है। ऐसे बैठ के अपने आप से बात करो, नहीं तो गीत बजते गीत के विचार चलते हैं, ज्ञान खत्म है ना। इसलिए 2-3 मिनट पहले रखता हूं, फिर गीत बजेगा, ठीक है। आप 2-3 मिनट आराम से आंखें बंद नहीं करना, दिखाई देता है टीवी में आपका छोटा आंख नहीं बड़ा आंख दिखाई देता है। ओम शांति।
मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार, संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार, सुहाना सच गाएगा, सुहाना सच गाएगा, मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो।